today we'll be talking about the revenue of the Mughal Empire. जब से हम जहांगीर की रेन को विटनेस करते हैं, जो जहांगीर का कोर्ट था, इट वाज वेरी फैशनेबल. एंड वहाँ पे जो भी लोग रहते थे, नॉबल्स थे, वेल्दी मर्चेंट्स थे, दे ट्राई टू बी, उनमें ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ होता था हर चीज़ को लेके. हर चीज़ दिखाते थे कि हम पे ये है, हमारे पास ये है. और जो भी हाई ऑफिसर्स और नोबल्स पैलेसेस में रहते थे, वो लोग ड्रेस अप करते थे, फाइन क्लॉथ्स और अच्छे से रहते थे. और उनकी स्लीव्स में ज्वेल्स भी होते थे. म्यूजिशियंस उनको बहुत पसंद थे, सिंगर्स उनको बहुत पसंद थे. और मुगल कोर्ट जो खुद भी है, इट वाज अ सिंबल ऑफ पॉम्प एंड लग्जरी. एंड अगर हम एम्परर की बात करें, एम्परर भी बहुत सारे एक्सपेंसिव अरेंजमेंट्स करवाता था इधर उधर. एंड ये सारी लग्जरी पॉसिबल थी बिकॉज इनकम थी गवर्नमेंट के पास. एंड जो भी इनकम गवर्नमेंट की बढ़ रही थी, उसका रीज़न ये था कि पीजेंट्स वर वर्किंग हार्ड एंड आर्टिसंस वर वर्किंग हार्ड. एंड पीजेंट्स के लिए देर वॉज नो लग्जरी. दे हैड टू वर्क हार्ड इन देयर फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. एंड दे हैव डन इट फॉर मैनी सेंचुरीज. देयर मेन कंसर्न वॉज टू हैव अ गुड एनफ हार्वेस्ट सो दैट दे कुड पे देयर टैक्सेस. अगर हम 17th सेंचुरी की बात करते हैं, तो जो टैक्सेशन था वो बढ़ता गया फ्रॉम 1/3 टू ऑलमोस्ट अ हाफ. इससे जो उनकी लाइफ है वो थोड़ी और मिजरेबल हो गई. और एक्स्ट्रा इनकम जो थी फ्रॉम टैक्सेस, वो खा लेते थे लोग, स्पेशली नॉबल्स. एंड ऑफिसर्स हैड टू बी पेड. एज द एम्पायर ग्रू लार्जर, मोर ऑफिसर्स वर रिक्रूटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर. और आर्मीज़ को भी मेंटेन करना था, तो भी पैसा चाहिए. इसके साथ साथ जो लग्जरी और स्प्लेंडर था मुगल कोर्ट का, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे. एंड इसके लिए आर्टिसंस जो हैं वो भी बहुत काम करते थे. दे यूज़ टू वर्क हार्ड. एंड कुछ इनकम जो है ट्रेड से आ जाता था. इंडिया इस टाइम पे पर्शिया, चाइना, ईस्ट अफ्रीका, रशिया, वेस्टर्न यूरोप, ये सारी जगह से ट्रेड कर रहा था. एंड हमने ये देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज से शिप्स आई हैं, सच एज पोर्चुगल से आई हैं, इंग्लैंड से आई हैं. एंड वो लोग बहुत सारा कार्गोज वापस लेके जाते थे. इंडियन मर्चेंट्स भी बहुत अपने जो गुड्स हैं वो हाई प्राइसेस पे बेचते थे. एंड ये भी जो है कहीं ना कहीं इंडिया की वेल्थ में एड ऑन हुआ. और जो ट्रेड था मेनली हिंदू मर्चेंट्स के हाथ में था. जैसे जैसे इंक्रीज होता है ट्रेड में, इससे एम्प्लॉयमेंट मिली आर्टिसंस को. और वो टाउन्स में रहते थे आर्टिसंस मोस्टली. एंड टाउन्स भी इस चीज़ से फ्लरिश हुए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्लस ट्रेड, ये सब चीज़ों की वजह से टाउन्स बहुत फ्लरिश हुए. और जितने भी ट्रैवलर्स थे इस टाइम के, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो वेल्थ है टाउन्स की, कुछ टाउन्स बहुत ही प्रोमिनेंटली वेल्दी थे, सच एज दिल्ली, लाहौर, आगरा, बनारस, सूरत, लाहौर, मसूलीपट्टनम. यूरोपियन मर्चेंट्स जो हैं वो चीफली इंडियन टेक्सटाइल्स में इंटरेस्टेड थे. एंड दे यूज टू ब्रिंग कार्गोज ऑफ मलमल्स फ्रॉम ढाका, ईस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, सिल्क फ्रॉम बनारस, कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम सूरत, अहमदाबाद एंड मदुराई से भी चीज़ें आती थी, और पेपर आता था मालाबार से. एंड ये सब फॉरेन ट्रेडर्स जो हैं वो ख़रीदते थे. और इंग्लिश वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इन द इंटरेस्टेड इन इंडियन ट्रेड. उनका बहुत इंटरेस्ट इस टाइम पे आ रहा था कि वो इंडिया में ट्रेड करें. और इन जो इंग्लिश के मर्चेंट्स थे, दे फॉर्म देमसेल्फ इनटू ट्रेडिंग कंपनी, जिसका नाम है हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड जो फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने सेटअप की थी, दैट वाज इन सूरत. एंड धीरे धीरे ये अदर पार्ट्स ऑफ द कोस्टल एरियाज में भी स्प्रेड हो जाती है. हम इंग्लिश मर्चेंट्स की बात कर रहे हैं. और अगर बंगाल की बात करें, तो दे वर अलाउड टू ट्रेड एनी वेयर दे विश्ड. एंड जो लोकल गवर्नर था, he was paid a some amount of money. ye right ke badle mein he was paid some amount of money, and this payment was nothing as compared to the large profits which company made from there. agar hum art aur architecture ki baat karte hain, जैसे कि हमें पता है कि मुगल गवर्नमेंट की जो रेवेन्यूज़ हैं या इनकम है वो बढ़ती जा रही थी, और इससे लग्जरीज़ तो कोर्ट में भर ही रही थी, बट जो बिल्डिंग्स हैं जो रूलर्स ने बनवाई हैं दे वर ऑल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर फाइन एंड रिचर। और अकबर के टाइम पे मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, अभी जो बन रही थी दे वर मोर एक्सपेंसिव एंड मार्बल लाया जा रहा था राजस्थान से। एंड ये जो प्लेसेस हैं एंड मॉस्क्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर दिल्ली में हैं, आगरा में हैं और लाहौर में हैं। और जो टॉम्स हैं सच एज इतिमादुद्दौला एट आगरा, ये भी बहुत फेमस है। और अगर हम शाहजहाँ की बात करें तो उसके टाइम पे पर्टिकुलरली शाहजहाँ को याद किया जाता है ब्यूटीफुल डिज़ाइंस के लिए विच ही हैड बिल्ट। एंड ये जो बिल्डिंग्स हैं वो दो रीजंस की के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। पहला ये था कि उनमें फाइनेस्ट फीचर्स ऑफ इंडियन और फॉरेन आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, स्पेशली डोम्स ऑफ वेरियस शेप्स, डेकोरेटेड आर्च्स, टाल मिनिएचर्स, बालकनीज, ब्रॉड ड्रूपिंग केव्स, स्मॉल पैवेलियंस एंड डेकोरेटिव फीचर्स कॉमनली फाउंड इन इंडियन आर्किटेक्चर। सेकेंडली जो चीज़ हमें इन बिल्डिंग्स में देखने को मिलती है वो ये थी कि बिल्डिंग जो भी ये बिल्डिंग्स हैं दे वर वेल बैलेंस्ड। इसी रीज़न की वजह से ताज हैज़ नाउ बिकम फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। अगर हम औरंगज़ेब की बात करें तो जब औरंगज़ेब का टाइम आया, जब उसका टाइम डिक्लाइन हो रहा था, मुगल आर्किटेक्चर वॉज नो लॉन्गर इम्प्रेसिव एज वो स्टार्टिंग में था। बहुत सारी बिल्डिंग्स एट दिस टाइम वर कॉपीज ऑफ अर्लियर बिल्डिंग्स ओनली, कुछ नया नहीं हो रहा था एंड पीपल वर ट्राइंग टू कॉपी द थिंग्स जो उन्होंने पास्ट में देखी थी। जितने भी मुगल एम्परर्स हैं, जहांगीर उनमें से एक है जिसको पेंटिंग्स बहुत पसंद थी एंड वो एकदम से पहचान लेता था, इवन पेंटिंग देख के स्टाइल बता देता था कि ये कौन सा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। एंड इसी वजह से जहांगीर के कोर्ट में बहुत सारे बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट पेंटर्स थे, सच एस बिशन दास था उसके पास, मुराद था, मंसूर था, बहजाद था, और उसने एनकरेज किया इन सब आर्टिस्ट को कि वो स्कूल ऑफ पेंटिंग में इंटरेस्ट लें। एंड ही वॉज क्यूरियस कि जो टेक्निक्स हैं यूरोपियंस जो यूज़ करते हैं टेक्निक्स, वो जो थॉमस रो ने उसको दिखाई थी, तो वो चाहता था कि हमारे जो यहाँ के पेंटर्स हैं वो भी वो चीज़ सीखें। औरंगज़ेब के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस हुए जब वो एम्परर बनता है। औरंगज़ेब ने पेंटिंग को डिसअप्रूव कर दिया और आर्टिस्ट को काम मिलना बंद हो गया, तो इसलिए वो प्रोविंशियल कैपिटल से थोड़ा दूर जा के रहने लगे। लोकल गवर्नर्स ने उनको एम्प्लॉयमेंट दी एंड कुछ जो हैं वो स्मॉल स्टेट्स में चले गए, पंजाब चले गए, राजस्थान चले गए, कांगड़ा, गुलेर, गढ़वाल, पंजाब हिल्स में एंड मेवाड़, बीकानेर, बूंदी, कोटा, कृष्णगढ़ इन राजस्थान। और एक और स्कूल ऑफ पेंटिंग है जो इस टाइम पे फ्लरिश हुआ था, डेक्कन स्कूल, उसने इनक्रेज किया बीजापुरी किंग्स को। एंड दिस वॉज एक्चुअली जो डेक्कन स्कूल ऑफ पेंटिंग है, इट वॉज एनकरेज बाय द बीजापुरी किंग्स। और बहुत सारी प्लेसेस में ये जो इंटरेस्ट है पेंटिंग का ये डेवलप हुआ, और हमें 18th सेंचुरी में बहुत फाइन पेंटिंग्स मिली हैं। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो जो अर्लियर किंग्स थे देवर गुड म्यूजिशंस ऑल्सो, एंड कुछ लोगों को म्यूजिशंस कोर्ट में रखना बहुत पसंद था। फिर हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडियन स्टाइल का म्यूज़िक उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ मुगल कोर्ट में। और औरंगज़ेब को ये भी पसंद नहीं था, म्यूज़िक भी पसंद नहीं था, एंड उसने म्यूजिशियंस को भी डिस्करेज किया और उनको भी स्मॉल किंगडम्स में जाके शरण लेनी पड़ी। लेकिन फिर भी मुगल कोर्ट जब नोबल्स थे वहाँ पे, तो नोबल्स को पसंद था ये गाना वाना। उस टाइम पे काफ़ी न्यू स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग डेवलप हुए, सच एस ख्याल मुगल कोर्ट में डेवलप हुआ, ठुमरी जो बहुत पॉपुलर हो गया था उस टाइम पे। अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो मुगल एम्परर्स जो थे वो लिटरेचर और लर्निंग के बहुत बड़े पैटर्न्स थे एंड उनको बहुत इंटरेस्ट था लिटरेरी एक्टिविटीज़ में, और वो अपने लिए राइटर्स रखते थे अपने कोर्ट में ताकि वो चीज़ों को डिस्क्राइब करके प्रॉपरली लिख सकें। और औरंगज़ेब के अंडर भी एक टेक्स्ट बुक लिखी गई थी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी थी औरंगज़ेब ने कि उसको कैसे लिखना है उसके ग्रैंडसन के लिए, उसने उसमें बताया था, साइंटिफिक नॉलेज बताई थी इंडियन स्कॉलर्स की, और पर्शियन जो है वो अभी भी कोर्ट लैंग्वेज थी। अगर हम टाउन्स की बात करें, विलेजेस की बात करें, तो पीपल यूज टू स्पीक इन हिंदी एंड उर्दू। अपार्ट फ्रॉम कबीर एंड तुलसीदास, देर वर अदर्स जिनकी पोइट्री बहुत फेमस और पॉपुलर हुई। उनमें से एक था ब्लाइंड पोइट ऑफ आगरा, जिसका नाम था सूरदास, हुज सुर सागर आज तक वो पढ़ा जाता है। एंड अनदर वॉज रस खान, अ मुस्लिम नोबल, जिसकी पोएम्स हैं कृष्णा की लाइफ पे, सच एज प्रेम वाटिका। रस खान एक मुस्लिम नोबल था, उसने कृष्णा की लाइफ पे पोएम्स लिखी हैं। और एक और पोइट है बहुत फेमस जिसका नाम था सतसाई, वो बिहार से था। और बहुत सारी जो है पोएम्स लिखी गई उर्दू में 18th सेंचुरी में। और दिल्ली और जो लखनऊ है ये उर्दू पोइट्री का सेंटर बन गए। 17th सेंचुरी वॉज अ एज ऑफ स्प्लेंडर ऑफ इंडिया एंड मुगल कोर्ट सेट द फैशन फॉर गुड लिविंग। 18th सेंचुरी व्हेन द एम्पायर डिक्लाइन द कल्चर विच इट हैज़ क्रिएटेड कंटिन्यू टू लिव, समहाउ कल्चर कंटिन्यूड फॉर सम ईयर्स। और जो स्मॉलर किंगडम्स थे विच अरोज फ्रॉम द ब्रेकअप ऑफ द एम्पायर कंटिन्यूड द फैशन सेट बाय द मुगल्स। तो उन्होंने थोड़े टाइम के लिए उसको कैरी ऑन किया, लेकिन लेटर ऑन वो फाइनली डिक्लाइन हो जाता है मुगल्स के बाद। थैंक यू, दिस वॉज अबाउट अवर मैग्निफिसेंस ऑफ द एम्पायर, द एज ऑफ मैग्निफिसेंस। चैप्टर 8 फिनिशेस हियर। थैंक यू।